اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد والا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارن صلوات پڑھے محمد والا عزیزان محترم عزاداران امام سکس مجلس رضوی کالج بامبے 1441 ہجری تربیت اولاد پہ ہو رہی کہ ہاؤ ٹو اپ برنگ آور چلڈرن ان 21st سینچری آج کے یہ ایول ورلڈ میں کہ جس میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا اتنا ڈیفیکلٹ ہے یہ دور یہ زمانہ یہ میرے جملے نہیں ہیں اللہ کے رسول کے جملے اللہ کا رسول بولتا ہے کہ آخری زمانے میں یہ کیسا پیریڈ ہے کیسا زمانہ ہے کیسا وقت ہے وہ دیکھو آپ ظاہری طور پہ جب آپ سنیں گے یہ بات تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کیا یہ پاسبل ہے یہ کر سکتے جو میں فرسٹ ڈے سے بول رہا یہ ایول ورلڈ ہے ایول ورلڈ اور آج سب سے زیادہ مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا تو اولاد کو اگر کوئی بچا لے تو یہ سب سے بڑا اچیومنٹ ہے سب سے بڑا اچیومنٹ قرآن میں اللہ کیا بول رہا یا ایہا الذین آمنوا کو انفسکم اے صاحبان ایمان اے امام علی کے چاہنے والوں اس لیے کہ صاحبان ایمان علی والے ہی کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچا لو کلیئر میسیج ہے اور اللہ صاف طور پہ بول رہا کہ صرف خود عبادت کر کے یا خود اپنے اعمال کر کے یہ سمجھنا کہ میں پروٹیکٹڈ ہوں مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا 100% آپ کے بارے میں آپ سے کوشچن کیا جائے گا بٹ اولاد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا دوسرے چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ معاشرے میں کیا ہو رہا وہ کیا ہو رہا لیکن اولاد کے بارے میں آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کے چلڈرن کے بارے میں عورت سے ماں سے اور باپ سے پوچھا جائے گا کہ واٹ یو ہیو ڈن وتھ یور کڈس کیا کیا تم نے اور اولاد کے ساتھ اور یہ پیریڈ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایول ورلڈ ہے ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ مشکل ہے اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے غور سے سنو مشہور حدیث ہے ویری فیمس سیئنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے فیمس حدیث ہے آخری پیریڈ کے لیے سائنس آف ری اپیئرنس آف امام میں بھی آپ کو ملے گی یہ حدیث اللہ کا رسول کیا کہہ رہا پورے مسلمان بھرے ہوئے مسجد میں ویری کیئرفلی سے عورت مرد سب مسجد بھری ہوئی ہے اللہ کا رسول بول رہا کہ میں ایک ایسا زمانہ دیکھ رہا میں ایک ایسا پیریڈ دیکھ رہا میں ایک ایسا وقت دیکھ رہا کہ جس وقت میں میرا کلمہ پڑھنے والے میرا نام لینے والے مجھے ماننے والے ان کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ صبح سے شام تک ہول ڈے اپنے ہاتھ میں فائر بال آگ کا انگارہ لے کے ٹھہرنا پاسبل ہو جائے گا لیکن ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے ان کو ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا آپ انصاف سے بولو کہ کیا کوئی فائر بال لے کے ٹھہر سکتا ہے کیا میں اپنے ہاتھ میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے ٹھہر سکتا ہوں امپاسبل ہے میں فوراً ہاتھ کو جھڑک دوں گا ہاتھ جل جائے گا میرا لیکن رسول کیا کہہ رہے وہ پاسبل ہے تم ٹھہر سکو گے لیکن ایمان کا بچانا اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے مسلمان گھبرا گئے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ زمانہ کب آئے گا تو کہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے آئے گا اور جتنے وہ لوگ ہوں گے وہ صاحبان ایمان ہوں گے اس کے بعد کہا کہ جس نے بچا لیا جس نے آگ کے انگارے سے اپنے آپ کو بچا لیا اس کو میرا سلام. اس ان مسلمانوں کو, ان ایمان والوں کو میں سلام کر, رسول کہہ رہا 1400 سال پہلے, میرا سلام. تو جب یہ کہا تو جو مسلمان تھے سامنے ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, اس کے بعد رسول کا جملہ سلام اور وہ لوگ میرے بھائی ہیں. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ آخری زمانے میں جس نے ایمان کو بچایا وہ میرے بھائی. تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے, ہم نے آپ کے ساتھ سارا کام کیا, نمازیں پڑھی, جہاد کیا, حج کیا, ساری چیزیں کی, آپ ہم کو بھائی نہیں بول رہے, ان کو بھائی بول رہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جو ایمان لائے وہ مجھے دیکھ کر لائے, مجھے دیکھا تو ایمان لائے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میری اولاد میں کسی کو دیکھا, اس لیے کہ ہم نے مولا رسول کی اولاد میں کسی کو نہیں دیکھا, نہ مجھے دیکھا نہ میری اولاد میں کسی کو دیکھا, ان لوگوں نے ایک پیپر کے اوپر, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, ایک پیپر پہ انک سے لکھی ہوئی کتابیں اور قرآن کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے, اسی لیے میں ان کو بھائی بول رہا. ہم جو ایمان لائے کتابوں کو دیکھ کر لائے نا, ہم نے رسول کو دیکھا نا, رسول کی اولاد میں دیکھا. وہ لوگ جو مسلمان تھے انہوں نے رسول کو بھی دیکھا, رسول کی اولاد کو بھی دیکھا. رسول کہہ رہا ہے کہ آخری زمانہ یہ ایسا ہے, یہ لاسٹ پیریڈ, اسی لیے میں یہ ٹاپک کو میں بار بار سٹریس کر رہا کہ یہ پیریڈ میں, اس وقت میں اگر ہم اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو نہیں بچائیں گے تو اسٹیج ایسا آئے گا کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارا ایمان بھی جائے گا اور رخصت ہو جائے گا. اللہ کا رسول کہتا کہ رات میں سوئیں گے, کتنی عجیب حدیث ہے, رات میں سوئیں گے ایمان کے ساتھ. ایمان کیا, دیکھیے دوستو, واٹ از ایمان, واٹ از ایمان, ایمان از بیس ہے آپ کا, ولایت علی بولتے جس کو, ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, ساری عبادتیں ایک طرف, ایمان ایک طرف, ایمان کے ساتھ ساری عبادتیں قبول ہوں گی. رات میں سو گئے ایمان کے ساتھ, صبح اٹھو گے تو ایمان, رسول کا جملے, صبح اٹھو گے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. ایسا رخصت ہوگا جیسے تم نے رات میں سرما لگایا, اڑ گیا, پتہ ہی نہیں چلا کیسے اڑا, ویسے ہی تمہارا ایمان چلا جائے گا. گھر سے نکلو گے ایمان کے ساتھ, گھر واپس آؤ گے ایمان رخصت ہو جائے گا. اگر آج کا پیریڈ دیکھ رہے ایگزیکٹلی جو اللہ کے رسول نے کہا وہی زمانہ پلٹ کے آ گیا, پتہ ہی نہیں کس کا ایمان کا ہے, پتہ نہیں کہ واٹ آر وی ڈوئنگ, کس انداز سے آج اوپن ہو کے سب امام کے چاہنے والے. آج تھوڑا سا میں اوپن ہو کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ 3 دن رہ گئے بس, میں یوتھ کو بول رہا, بامبے کے یوتھ کو اور دنیا بھر میں جو یوتھ مجھے سن رہا ڈفرینٹ چینلس کے اوپر, میں ان کو بول رہا کہ آج کتنی بیماری ہو گئی ہمارے پاس, ڈرگس کی بیماری, کتنے ڈرگس آج ہماری کمیونٹی میں آ گئے. یوتھ کو اس کی فکر ہے کہ ڈرگ کا لینا کیا ہے, کالجز میں کیا ہو رہا, آفیسز میں کیا ہو رہا, پارٹیز میں واٹس ہیپنگ. اگر ہمارا لڑکا جو علی کا کلمہ پڑھتا ہے, عزاداری حسین کرتا ہے, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا ڈرگس لے رہا, یہ ڈرگس وہ بیماری ہے دوستو کہ تمہارا ایمان رخصت ہو جائے گا. میں یوتھ کو بول رہا, پلیز چیک یور سیلف, چیک یور سیلف, کہ اگر ایک دفعہ تم اس میں انوالو ہوئے, ایک دفعہ انوالو ہوئے, تمہارا پورا فیوچر ڈارک ہو گیا. دنیا میں بھی عزت نہیں ہے, گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی, یہاں کا رول آف لینڈ جو ہے انڈیا کا وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تمہاری سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی, تمہارا فیوچر میں تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا, کوئی فیملی تم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, تمہاری وائف تم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. سو ویئر آر یو گوئنگ, ویئر آر یو گوئنگ. اگر آج یہ پرابلم لڑکیوں میں بھی آ گیا, آئی ایم سو سیڈ ٹو سے دس, کہ ڈرگس ہمارے لڑکا, ماں باپ کو فکر ہے, انلیس تم اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بناؤ, 5 دن سے جو بول رہا وہ یہی تو بول رہا کہ گھر کا ایٹماسفیئر ایسا بناؤ کہ تمہارا بیٹا اگر 1 لاکھ ڈرگس ایڈکٹس کے پاس رہے, پلیز غور سے سنو, 1 لاکھ ڈرگ ایڈکٹس کے پاس اگر تمہارا بیٹا بیٹھے تو ہی شوڈ نو کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از بیڈ, گڈ کیا ہے بیڈ کیا ہے, ہی شوڈ نو. ٹاک اباؤٹ دیم, یار بچوں سے بات کرو. کل کی مجلس میں میں نے کیا کہا کہ وہ گیپ کو ختم کرو, پیرنٹس کو چاہیے وہ گیپ کو ختم کرے, ماں کو چاہیے کہ بیٹے کو حق کرے, بیٹی کو حق کرے, sit with her, sit with them and talk to them. वो जो gap है ना, जिसकी तरफ से तुमको पता ही नहीं चल रहा, बच्चा कॉलेज जा रहा, what you know about the college? कोई उनके, हमारे पेरेंट्स को मालूम है कि मेरे बेटे के दोस्त कौन है, फ्रेंड्स कौन है? बीबी सहरा ने क्या किया? इमाम हसन से पूछा. Why she has asked इमाम हसन? अरे मेरा मौला इमाम है. लेकिन बीबी ने इमाम हसन से नहीं पूछा, पूरी कम्युनिटी के, पूरी कौम के कनीजों से को मैसेज दिया कि मेरा बेटा हसन है, सरदार है, जमाना ने जन्नत है. लेकिन उसके बावजूद मैं पूछ रही कि बेटा बाहर क्या हुआ. और हम पूछते, वी डोंट आस्क, वी डोंट से, वी डोंट टॉक. फॉर्मल टॉकिंग नहीं चाहिए मुझे. यू शुड नो कि तुम्हारा बेटा जा रहा कहां, तुम्हारी बेटी जा रही कहां, उसकी फ्रेंड सर्कल क्या है. पहले, सबसे पहले अपने बच्चों से ट्रस्ट को बिल्ड करो, ट्रस्ट को बिल्ड करो, वो गैप को हटाओ. आज ड्रग्स की बीमारी, मेरे ऊपर प्रेशर हुआ ये बात, लास्ट ईयर भी मैंने बोला था लेकिन लाइट बोला था. मैं पूरी दुनिया में बोल रहा हूं ये ड्रग्स के बारे में, जहां जा रहा हूं आजकल ये प्रॉब्लम है. यूके में गया तो वहां पर प्रेशर कि मौलाना ये ड्रगिस्ट, ये ड्रगिस्ट, ये ड्रगिस्ट. कौन है ये? शिया बच्चे, आजादार है, इमाम अली का कलेमा पढ़ने वाले, और ये बीमारी में आ गए. कब से? स्कूल एज से शुरू हुआ, कॉलेज एज से शुरू हुआ. मैं यूथ को बोल रहा, लड़कों को, लड़कियों को बोल रहा, बेटा तुम्हारा फ्यूचर क्या है? फिर क्या फ्यूचर होगा? खत्म हो जाओगे सोसाइटी से, तुम खत्म हो जाओगे, खानदान तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम बिल्कुल अलूफ हो जाओगे. और ये लड़के जब ड्रग्स लेना शुरू करते तो फिर दे डोंट केयर, दे डोंट केयर. अलग हो जाने दो, अलग होने दो. एक तबाही है, डिजास्टर है, डिजास्टर है. अल्लाह का रसूल बोल रहा कि हाथ में अंगारा लेके ठहरना पॉसिबल है, ईमान का बचाना मुश्किल है. ये वही है शर्म, कितनी आसानी के साथ. और इस्लाम इतना कंडेम कर रहा, कल आपने सुना नशा, चौथे इमाम क्या बोल रहे कि मत लो, मत कर. देखिए नशा कई वजह का है, नशा कई वजह का है, ये एक नशा है. और ऐसा नशा है कि तुम अल्लाह से दूर हो गए, इमाम अली से दूर हो गए, मजलिस से दूर हो गए, तसव्वुर, इमेजिनेशन, अल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर हो गए. अगर सब चीजें हो गए, तुम ड्रग लेने के बाद अगर तुमको मौत आ जाए तो क्या होने वाला है? तुम समझे तुम जन्नत में जाओगे? मौत कौन सी होगी? हराम मौत. उसी तरह ड्रिंक्स, ये पार्टीज में जाने से पहले चेक करो कि किस पार्टी में जाना है, किस पार्टी में नहीं जाना है. या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अन्फुसकुम वा अहलीकुम, अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचा लो. अल्लाह बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा. ये जो पार्टीज है जहां पे ड्रिंक्स मिल रहे, उसी ड्रिंक में ड्रग डाल के पिला के अपनी औलाद को तबाही की तरफ मत लेके जाओ. चार बेटे दो ड्रगिस्ट है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, मैं बॉम्बे की बात कर रहा, दो ड्रगिस्ट है. और जब नॉर्मल है तो अच्छी बात कर रहे हैं. अब फिर उस बच्चों का फ्यूचर क्या है यार? फ्यूचर क्या है तुम्हारा? जहन्नम में जाओगे. ये लाइफ कितनी है? कितनी लाइफ है? 60, 70, 80, 90. देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन? कौन तुमको लेगा? दुनिया भी एक्सेप्ट नहीं कर रही. और सबसे पहली चीज, तुम्हारा इमाम को देखो ना, मौला को देखो ना, अपनी लाइफ को उस पाथ पे लेके जाओ कि ये मुहर्रम की मजलिस है, ये आजादारी, ये फायदा क्या पहुंचा रही तुम्हारे को अगर तुम ड्रग्स ले रहे थे और ड्रिंक कर रहे, लिखल ले रहे थे. यजीद लेता था, यजीद ड्रगिस्ट था, यजीद हर वक्त ड्रंक रहता था. ये सीरत यजीद है. और आज हम ले रहे, फैशन है. फिर इमाम को क्या सूरत बताओगे? पेरेंट्स को चाहिए, अभी भी जिनके मासूम बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, पेरेंट्स से बोल रहा, पेरेंट्स से बोल रहा, एटलीस्ट इन बच्चों को बचा लो, इन बच्चों को बचा लो। अगर तुमने इनको बचा लिया, एक लड़का या लड़की भी बच गई, तो वो तुम्हारी बख्शिश का सहारा बन जाएंगे। ये है करबला, ये है करबला। इमाम हुसैन ने जंग जो है वो सिर्फ नमाज के लिए नहीं की थी, हर चीज के लिए जंग है। इसी तरह हमको भी हर चीज के लिए बात करना है। करबला की जंग सिर्फ नमाज और रोजे के कुरान के लिए नहीं है, वो तो पढ़ रहे थे, वो लोग नमाज भी पढ़ रहे, रोजा भी रख रहे, चेहरे पे दाढ़ी भी है, पेशानी पे गट्टा भी है, सब थे, हाथ में तस्बीह भी ले रहे थे। वो अपने आप को सो कॉल्ड मुस्लिम कह रहे थे, दे वर सो कॉल्ड मुस्लिम्स, लेकिन ईमान क्या था कि रसूल के नवासे को मारो। उसी तरह अगर तुम इससे भी यह समझ रहे कि बेटा नमाज पढ़े तो काफी है, मस्जिद जा रहा तो काफी है, यू हैव टू मॉनिटर कि वेयर ही इज गोइंग, व्हाट ही इज डूइंग, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, ऐसा खरीब करके बच्चों को रखो। ये इविल वर्ल्ड है, ये आज के जमाने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है टू अपब्रिंग योर चिल्ड्रन। अगर तुमने अपब्रिंग सही कर ली तो ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बॉम्बे में ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनको प्रोटेक्ट कर लो, मेरी ख्वाहिश है। और आज सोचो उसके बाद ये इंटरकास्ट मैरिज इसी से होती है, इसी से हो रही है। जब ड्रगिस्ट हो गया, ड्रिंक लेने लगा, फिर वो किसी और इंटरकास्ट में चले आता, जब इंटरकास्ट में जाना तो तुम्हारा जनरेशन तबाह हो रहा, नस्ल खत्म हो जा रही, और तुम रिलैक्स होके बैठे हुए हो। और कभी भी ये मत सोचो, मैं सबको बोल रहा, कभी भी ये जहन में मत लाओ कि मेरा बच्चा तो प्रोटेक्ट है, बाजू वाला जो मेरा पड़ोसी है, जो मेरा नेबर है, आग वहां पर है, आग मेरे घर में तो नहीं है, मेरे बच्चे प्रोटेक्ट है। नो, अगर आग नेबर के पास है, पड़ोसी के पास है, तो ये रिलैक्स होके मत बैठो, ये आग कभी भी तुम्हारे पास आ जाएगी। जब तुम्हारे पास आ जाएगी उस वक्त तुम अपने हाथों को ऐसा मलना। मैंने देखा ऐसे लोगों को रो रहे कि अब क्या करना, मौलाना व्हाट यू वांट मी टू डू, गिव मी सम दुआ, व्हाट यू मीन दुआ, अब बोलते कि दुआ दो, व्हाट यू मीन दुआ, ऐसे मौके पे क्या दुआ। जब बच्चा बिगड़ रहा था तो तू वो रूट्स को क्यों नहीं पकड़ा तुमने, उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि आज मेरे, आज तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही, जब बच्चा बिगड़ेगा जब समझ में आएगी। तो मेरी ख्वाहिश, मैं आपको आज दो तीन बातें और बोलूंगा कि कितना तकलीफ है दोस्तों इन्हें, अगर आप माहौल को देखें, माशरे को देखें, ये समाज को देखें, ये सोसाइटी को देखें, तो अजीब रोना आता कि हमको पहचान नहीं सकते, हम आइडेंटिटी नहीं बना सकते कि ये कौन है और ये कौन है, ये इमाम अली का शिया है या कोई और है, हर चीज़ में एक ही हो गया। मिसाल के तौर पे किसी का ये जब ड्रगिस्ट होता ना, उसके ड्रिंक करने लगता ना, उसके नताइज देखो, उसके रीजन देखो, उसके बाद कितना होता, फिर वो माल खाता किसी का, खर्चों में जाता, लोगों से बोरो करता, प्रॉपर्टीज बेचता, लूट जाता, एंड ऑफ द डे क्या है, एंड ऑफ द डे क्या है इसका, एंड ऑफ द डे हर चीज खत्म होगी तुम्हारी। उनकी औलाद को मैं देख जानता कि रो फुटपाथ पे आ गए, मिलियनर्स थे, मिलियनर्स फुटपाथ पे, जगह का नाम नहीं बोलूंगा। तो ये हशर है, ये ड्रग्स का नतीजा। फिर यही लोग उस गुनाह की तरफ जाते जो आज के दौर का इस वक्त सबसे बड़ा गुनाह चल रहा, गैस का। कभी तुम बात करें बच्चों से, कभी बैठ के मीटिंग्स करें, क्या प्रॉब्लम है, इससे बचो। मैं यूथ को बोल रहा, इससे बचो, अपने आप को बचाओ। ड्रग्स के चक्कर में आओगे, एक गुना कर रहे, एक गुना से 10 गुना हो रहे। इमाम हुसैन ने इन सब के लिए जंग की है करबला में, सबके लिए जंग थी। यजीद ड्रिंक करता था, उस ड्रिंक के लिए जंग थी। यजीद वो गुना करता था, उस गुना के लिए जंग थी। यजीद जुआ खेलता था, उस जुआ के लिए जंग थी। यजीद हर वो हराम करता था जिसको इस्लाम ने मना किया है, उसके लिए जंग है। सिर्फ नमाज रोजे की जंग नहीं, टोटल इस्लाम के पैकेज की जंग है, टोटल इस्लाम उसकी जंग थी वो। तो करबला का मैसेज क्या है, इमाम हुसैन का पैगाम क्या है कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। हम सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना, उन मासूम बच्चों को प्रोटेक्ट करो कि जो तुम्हारा फ्यूचर है, जो तुम्हारा जनरेशन है। आप क्या समझ रहे कि ये इतनी आसानी से यहाँ पे आज़ादारी जो आप कर रहे, रिजी कॉलेज में माशाल्लाह हज़ारों का मजमा बैठा हुआ है, रिलैक्स होकर बैठे हुए, कार पार्क कर रहे, सब आराम के साथ जो बैठ के आप मजलिस कर रहे। क्या आपकी मजलिस ऐसी हुई थी, मैं बायोग्राफी ऑफ सातवें इमाम पढ़ रहा वहाँ पे रेक्सलो में, तो वहाँ पे अगर वो ज़माना देखें, हारून रशीद का, जाज बिन यूसुफ का, मुतवक्किल का, मोतसम का, मंसूर दुआनखी का, क्या हाल है। 100,000, एक एक लाख। जब हज्जाज बिन यूसुफ खत्म हुआ, जब हारून रशीद वासील जहन्नम हुआ, तो 1,00,000 100,000 लोग उसकी प्रिजन जेल में से निकले। और उनका जुर्म क्या था, उनका क्राइम क्या था, क्या वो लोग डाका डाला था, क्या उन्होंने किसी का मर्डर किया था, क्या क्राइम था उनका। क्राइम सिर्फ यह था कि उन्होंने मौला अली के पाथ को फॉलो किया था, अली के रास्ते पे चल रहे थे। उन लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने इमाम अली को एक्सेप्ट किया, उनकी तालीमात को एक्सेप्ट किया, उनके टीचिंग्स को एक्सेप्ट किया, तो उसका नतीजे में लेके जाके जेल में डाल दिए। और ऐसी ऐसी जेल्स थी कि बाज रिवायतों में है कि 20 ईयर्स के बाद, यार इमेजिन करो 20 साल से उन लोगों ने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। मैं कितना रिलैक्स होकर पढ़ रहा और आप कितना रिलैक्स होकर सुन रहे। आपको कुछ तकलीफ हुई, जस्ट टेल मी, या पिंच हुआ कुछ, कुछ अफसोस हुआ कि हमारा भाई 20 साल जेल रोशनी नहीं देखा, कुछ तकलीफ हुई, कुछ ही नहीं। क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि हमको फिक्र ही नहीं है। या यो लजीना अमनु है, बचो उस आग से बचो। आबिद बिलग्राम ही नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा। ऐसे जमाने से ये शियत यहां पे आई। और आज अगर हमारा यूथ इस पूरी शियत को रेस कर दे अपने अमाल से, 10 साल के बाद कोई फ्यूचर है, 15 साल के बाद कोई फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। फिर कहां जाएगी आजादारी आपके इंडिया में। इंडियन में जो आजादारी आई है, इंडिया में जो इमाम का पैगाम आया है, किसी के कुर्बानी से आया, यहां पे भी पूरी सब कॉन्टिनेंट में जो शियत है नॉर्थ सन साइड पे, किसका सेक्रीफाइस है, एक आदमी का। मैं उनका वाकया नहीं पढ़ रहा, बट आई एम टेलिंग यू, सैयद नूरुल्लाह शूस्त्री शहीद सालिस, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। वो एक आदमी था कि जिसने अपना सेक्रीफाइस देकर दीन के रूट्स को इतना मजबूत किया कि अगर आज पूरे नॉर्थ इंडिया में, लाहौर से लेके पंजाब से लेके इंडिया का पंजाब, इंडिया का पूरा नॉर्थन इंडिया, अगर आप देखो सिर्फ एक आदमी इतनी बड़ी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी के सामने खड़ा हुआ। इसलिए कि जब उनको शहीद करने के लिए लेके जा रहे थे, तो उस वक्त वो एक जो आलिम दीन थे, उन्होंने कहा था कि जाके सॉरी बोल दो जहांगीर को, तुम बच जाओगे। तो पलट के 52 ईयर्स की एज है, जस्ट 52, पलट के कहा कि आज मेरी शहादत हिंदुस्तान में शियत को मजबूत करेगी। खबर इसके कि मैं आगे बढ़ूं, इसलिए कि आज मजलिस के फौरन बाद मेहंदी आएगी, तो बाद में मैं ऐलान नहीं कर सकता। इंशाल्लाह रोजे आशूर यहाँ पे आमाल होंगे, नमाज जोहरैन से पहले 11 बजे आमाल शुरू होंगे रिजवी कॉलेज में आशूरे के दिन। मौलाना शेख अब्बास इस्माइल ये आमाल कराएंगे और नमाज जोहरैन पढ़ाएंगे, और उसके बाद मजलिस होगी जिसको मौलाना जाफ़र अब्बास साहब पढ़ेंगे जो 3 बजे, और उसके बाद फाखर शिकनी होगी, और उसके फौरन बाद मगरिब के फौरन बाद हर साल की तरह शाम गरीबा की मजलिस होगी जो यहाँ की मखसूस मजलिस है। पहले मगरिब की नमाज है, फिर शाम गरीबा की मजलिस, इस मजलिस को मैं खिताब करूँगा। और मजलिस के फौरन बाद रिजी कॉलेज से साइलेंट जुलूस निकलेगा जो कार्टर रोड तक जाएगा और फिर वापस आएगा, जिसमें लेडीज़ जेंट्स सब کو شریک ہوتے ہیں, کینڈل جلوس ہوتا ہے, اور شام غریباں کی مجلس کے فوراً بعد رضوی کالج سے سائلنٹ جلوس نکلے گا. اور ایک مجلس کا مجھے اعلان دیا گیا, ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ مجلس دریا والا علم کے نام سے ہوتی ہے, جو 8 محرم کو ہوگی. 8 محرم کو جو پہلی مجلس جناب مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے, اور مجلس جب ختم ہوگی تو مولانا مرزا محمد جعفر عباس صاحب اس کو پڑھیں گے. تو اس جلوس میں دریا والے علم میں ضرور شرکت کریں. یہ بڑے خاص مولا عباس کا دن ہے اس دن, اور اس دن یہ علم کی زیارت بھی ہوگی 3 بجے دن میں, اور اس کے بعد مجلس بھی ہوگی. ایک صلوات پڑھ لیں, محمد و آل محمد. تو یہ تو حشر ہے. ایک آدمی نے بچا لیا, کیوں؟ اس کو دل میں درد تھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دل میں کبھی درد ہوا؟ ہمارے دل میں ہم نے کبھی کوئی مشن بنایا؟ کچھ مت کرو آج کے دور میں. میں کچھ کسی سے کوئی چیز نہیں بول رہا, نہ اسلام ڈیمانڈ کر رہا. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو بچا لو, اپنی اولاد کو بچا لو. یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوگا تمہارا اگر اولاد بچ گئی. یو ول بی لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ. اب اسے زیادہ کیا بولو, یو ول بی دا لکیسٹ پرسن. سب سے زیادہ تم لکی ہوگی کہ اگر تمہارا بیٹا بچ گیا, تمہاری بیٹی بچ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایک بچے کو نہیں بچایا, پوری نسل کو بچا لیا. ادروائز حشر ہوگا کہ جیسے میں نے کہا کہ ڈرنکس کی طرف جا رہے, گیز اتنے کامن. یار یہ وہ گناہ ہے, یہ وہ گناہ ہے. میں یوتھ کو بول رہا, یہ وہ گناہ ہے کہ جس پہ اللہ کا عذاب آ گیا تھا, پتھر کا عذاب آیا تھا قوم لوط کے اوپر. یہ وہ گناہ ہے. یہ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, قوم لوط کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر جو بھی یہ کرے گا. کیسا آیا تھا وہ عذاب؟ تباہ تباہ ہو گئے تھے. اس کی بخشش ہی نہیں اگر یہ گناہ میں تم پڑھو گے. بچ جاؤ. یہ میں صرف اپنی کمیونٹی کو بول رہا, I'm talking to my youth. بس کالجز میں چیک کرو. تو ماں باپ کو چاہیے, ایٹ لیسٹ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. جب اچھا, اور ایک چیز کیا ہے کہ تم 14, 15 یا 16 تک تم بیٹھ کے بات کر سکتے. 16 کے بعد پہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہتا. جیسے وہ کالج میں آیا, اٹس آؤٹ آف یور کنٹرول. تو 16 تک, میٹرک تک اپنے بچوں سے اتنے کلوز ہو جاؤ, اتنے قریب ہو جاؤ, اتنا ان کو بتا دو کہ اگر وہ ہزاروں کے مجمع میں بھی گیا تو وہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑے. ایمان کو, ان کا فاؤنڈیشن, تمہاری اولاد کا فاؤنڈیشن اتنا مضبوط ہو جانا کہ اس کو تم باہر بھیج دو ہزاروں آدمی میں, تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ میں بھی وہ جائے گا تو وہ اپنے فاؤنڈیشن مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کا چراغ بجھے گا نہیں اگر تم نے بچوں کو بچا لیا. سیم چیز لڑکیوں کا دیکھو, آج 6 مہینے کے اندر, 4 مہینے کے اندر, 2 مہینے کے اندر, 3 مہینے کے اندر طلاق ہوتی ہے. کتنی آسانی چیز ہوگی, مجھے نہیں رہنا. کیوں؟ پیشنس ختم ہو گیا دونوں میں. پیشنس ختم ہو گیا, گھر کا ماحول ایسا نہیں بنا. جانے سے پہلے ماں بول کے بھیج رہی بیٹی کو کہ آئی ایم ہیئر, ڈو واٹ ایور یو وانٹ. پھر وہی کرے گی, ماں باپ کی سپورٹ ہوگی. آپ کو بتاؤں, میں اپنی سوسائٹی میں یا آپ کے بامبے میں کتنے ڈیورسز ہوئے یہ سال, You will be surprised. 40 to 50, 40 to 50. کیوں ہوئے بابا؟ اچھی بات ہوئی. یہ تربیت اولاد ہے. ماں کو چاہیے کہ بیٹی کو وہ تربیت دے جیسے بی بی زہرا کو اللہ کے رسول نے دی تھی, جبکہ ضرورت نہیں ہے بی بی زہرا کو تربیت کی. شہزادی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کام کرو. ہمارے پاس ایگزامپلس ہے, بی بی زینب جناب عبداللہ کی لائف, امام علی اور بی بی زہرا کی لائف, دشمن، پلیز غور سے سننا، دشمن سے، دشمن تاریخ لکھنے والے، ہسٹری کے نریٹرز جو ہیں، دشمن سے دشمن نے بھی کبھی بھی کسی نریٹر نے یہ نہیں لکھا کہ یہ پوری لائف میں، بی بی زہرا اور امام علی کی پوری لائف میں، یا اللہ کا رسول اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی پوری لائف میں، یا بی بی زینب یا جناب عبداللہ کی پوری لائف میں، کوئی ایک 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 نریٹر نے بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی کہ کبھی بھی دونوں میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوا ہو. اتنی کنٹرول اور کامیاب لائف. آج دیکھو کس انداز سے یہ تربیت ہے اولاد کی. گھر بیٹی کو گھر میں بلا کے رکھنا. میری خواہش ہے ان لڑکیوں سے جن کی شادی ہونے والی ہے، پلیز لائف کو اسپوائل مت کرو. لڑکی کی عزت اس کے سسرال میں اس کے شوہر کے ساتھ ہے، محکمے میں نہیں ہے. اس کی عزت اس کے شوہر کے ساتھ ہے. شوہر کو شوہر سمجھو. سمجھے میری بات؟ شوہر کو شوہر سمجھو. اگر تمہاری زبان کھلی تو ختم ہو گیا. زبان پہ کنٹرول کرو. شوہر سے کبھی مس بیہیو مت کرو. مس بیہیو کرو گے تمہارے حالات خراب ہوں گے. یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور ہسبینڈ. اف یو ڈونٹ ریسپیکٹ، میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا. 1000 حدیث ہے، کوئی ایک حدیث بتاؤ مجھے، کوئی ایک. اتنے بڑے مجمع میں ابھی 3 دن ہوں میں یہاں پہ، کوئی ایک حدیث بتاؤ کہ جہاں رسول نے کہا کہ اپنے شوہر سے مس بیہیو کرو. ڈو اینی تھنگ what we are saying now. آج جو ہم اپنی اولاد کو بول رہے ہیں نا، بیٹی کو بول رہے ہیں، بیٹی ڈو سم اینی تھنگ، آئی ایم ہیئر. پیچھے سے پیٹ کرنا کہ تم جو چاہے کرو. اور یہ بول رہے کہ بس ہسبینڈ کو لے کے الگ ہو جاؤ. میاں کا قصہ بولتا میں بمبے کا، کہ تڑپ کے ماں بول رہی، لڑکا بول رہا کہ پلیز آئی کی ناٹ لیو مائی پیرنٹس. وہ بولتی نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور مام، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو یور ڈیڈ، کیپ می سپریٹ. وہ بولا آئی کی ناٹ افورڈ ٹو کیپ یو سپریٹ ان بامبے، میں نہیں افورڈ کر سکتا، اس لیے کہ یہاں پہ حالات خراب ہے، میری سیلری اتنی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی پیرنٹس. بولتی نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور پیرنٹس. تو شادی سے پہلے کیا سوچا تھا؟ آج رو رہے تم، آج بوڑھے ماں باپ سے الگ کر رہے. تو میں تو ہمیشہ جب بھی کاؤنسلنگ کو جاتا ہوں پوری دنیا میں، جب میں لڑکی سے بات کرتا ہوں، میں پہلی بات یہی بولتا ہوں کہ بیٹا لسن، اگر تم اپنے شوہر کو ان کے ماں سے یا باپ سے الگ کر رہے، لے کے جا رہے، تو جو رحمت کا شیڈ تمہارے ہسبینڈ پہ ہے نا، وہ چلا جائے گا. کیا بول رہا یار میں؟ ماں اور باپ کا جو رحمت کا بلیسنگ کا شیڈ ہے نا، وہ شیڈ سے تم لے کے چلے جا رہے. رسک رک جائے گا، بیماریوں میں پڑو گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی، پریشانیوں میں ہوگے، سٹرس ہوگا. کیوں؟ کہ تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا، تمہارے فادر ان لا اور مدر ان لا کا ایک شیڈ تھا رحمت کا، وہ شیڈ سے تم نے اپنے ہسبینڈ کو الگ کیا. پھر تم اب فائنینشلی تم اتنا اسٹرگل کرو گے، اتنا اسٹرگل کرو گے. کیوں؟ اللہ نے وہ رحمت ہی ہٹا لی. جب رحمت ہٹا لی تو تمہاری زندگی میں سٹرگل آتا، ورنہ کچھ نہیں کرتے، خالی راتوں میں اٹھ کے ماں ہاتھوں کو اٹھا دے تو تیرے اوپر رحمت آ جائے. راتوں میں تمہاری ماں ہاتھوں کو اٹھا دے. میں تو یہ بھی بولتا کہ ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھائے. اگر بیٹا سامنے آ جائے ماں کے، اور آ کے ماں کو سلام کر لے، تو جو سکون ملتا نا ماں کو، وہ سکون تمہاری زندگی میں آ جاتا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ میں یوتھ کو بول رہا کہ کبھی بھی یہ انٹینشن کے ساتھ لڑکیوں کو بول رہا کہ اپنی لائف کو اسپوائل مت کرو. اور اگر تم نے اپنے شوہر کی ماں سے الگ کر دیا تو دین واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام اللہ؟ تم کو بھی بیٹا ہے، تمہارے پاس بھی بیٹا دیا ہے اللہ نے. دین واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ کہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ رہے؟ اللہ اسی دنیا میں بتاتا
इसी दुनिया में तुम्हारी जिंदगी जब मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, मिंबर से बोल रहा कि ऐसी ऐसी फैमिली जो ऐसे ऐसे अलग करके आंसुओं से मां बूढ़ी मां को रुलाया, जब इनका बेटा बड़ा हुआ तो अब ये खून के आंसू रोने लगे। उसने आके अल्लाह ने हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स वो जब पलटा तो अब रो रहे कि काश मैं उस वक्त इसको अलग नहीं करती। बेदारी करो यार, थोड़ी अवेयरनेस को पैदा करो। ये कोई स्मार्टनेस नहीं है, ये तुम अपने आप को स्मार्ट मत समझो अगर तुम अलग लेके जा रहे हो। तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं है, तुम्हारा डिजास्टर है, तुम्हारा ब्रॉटअप खराब हुआ जिसकी वजह से तुम ये कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको रेज अच्छा नहीं किया, यही तो मैं बोल रहा। रेज एक चीज का नहीं है, माँ के पैरों के नीचे अल्लाह ने जन्नत क्यों रखी? बाप के पैरों के नीचे नहीं है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ राजी तो जन्नत है। अल्लाह के रसूल के बाद एक शख्स ने आगे पूछा था, या रसूलल्लाह हम किसी को देख के बोल सकते हैं ये जन्नत ही है? किसी आदमी को देख, किसी मर्द को देख के बोल सकते हैं ये जन्नत में जाएगा? जो असाब बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा कि जन्नत और जहन्नम तो मरने के बाद है। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तुम दुनिया में देख के बोल सकते हैं ये जन्नत में जाएगा। तो सारे मुसलमानों ने कहा कि क्या मुसलमान की बात कर रहे हैं रसूल? नमाज रोजे के बाद बात कर रहे हैं, ईमान के बाद विलायत अली के बाद बात कर रहे हैं? ये नहीं है कि किसी को भी। सारी ये कंडीशंस के बाद अल्लाह के रसूल कहता है तुम इसके माँ बाप से पूछो राजी है। अगर माँ बाप राजी है तो ये जन्नत ही है। क्राइटेरिया ये नहीं बताए ये करो ये करो ये करो ये करो, नो। सारी इबादतें एक तरफ है, एक तरफ, मेरी बात गौर से सुनो, सारी इबादतें एक तरफ, रजाए माँ बाप एक तरफ है। इसलिए कि जो तुमको विलायत मिली, जो आजादारी मिली, जो तुम नमाज पढ़ रहे, तो कैसे पढ़ रहे? किसकी वजह से पढ़ रहे? माँ की तरफ से पढ़ रहे ना, बाप की तरफ से पढ़ रहे ना। अगर वो माँ बाप सही नहीं होते तो नमाज पढ़ते, तुम जिक्र अली करते, जिक्र हुसैन करते। वो माँ थी जो 9 महीने पेट में रखकर मजलिसों में आके जिक्र हुसैन सुनी कि पेट से तुम हुसैन हुसैन करते हुए दुनिया में आए। नहीं तो उस मां को तुम इग्नोर करोगे किसी की मोहब्बत में, सिर्फ उसकी मोहब्बत में। उसने कहा नो आई डोंट वांट टू लीव विद योर मॉम, और तुमने कहा ओके, इसलिए कि तुम्हारे पास तो जबान भी नहीं है। मां के लिए जबान है, किसी और के लिए जबान नहीं है। मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा, आई बेग यू। तरबियत औलाद का ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज था कि अगर तुमने औलाद को बचा लिया तो ये तुमको रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड है, और अगर नहीं बचाया तो सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं। देखिए बोलना बहुत आसान है, गो टू हेल, पता नहीं कौन जाएगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, अब मैं तारीख का एक वाकया पढ़ता आपको, हिस्ट्री का एक वेरी फेमस वाकया। इससे आपको पता चलेगा ये उन लड़कियों के लिए कि जो तरबियत औलाद का ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि इफ़ यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, माँ बाप की अगर तुमने इज्जत की तो अल्लाह तुमको दुनिया में कितनी इज्जत देता कि जो तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। $1 billion किसी के पास हो और उसकी कोई इज्जत नहीं है तो कोई फायदा है? टेल मी, उसको नींद ही नहीं है रात में बिस्तर पे, जब तक पिल नहीं लेता सो नहीं सकता। पिल वो फायदा है, और एक गरीब आदमी है और वो बड़े आराम से सो रहा, तो कौन सी जिंदगी अच्छी है? ये जिंदगी अच्छी है, ये $1 billion अच्छा है? पैसा सुकून नहीं देता, इमाम की विलायत सुकून देती। पैसा सुकून नहीं देता, इताअत अली सुकून देती। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? पैसा सुकून नहीं देता, खाली पैसे की दुआ नहीं करो, दुआ ये करो अगर तुम्हारी औलाद बिगड़ी हुई है तो क्या माँ बाप सो सकते घर में? अगर तुम्हारा बेटा ड्रगिस्ट है तो माँ बाप सो सकते घर में?
अगर तुम्हारा बेटा ड्रिंक करता है, यू कैन स्लीप, तुम सो सकते, मां सो सकती, बाप सो सकता, नो नहीं सो सकते। अगर तुम्हारी बेटी का डिवोर्स हो जाए, लड़की सो सकती, मां बाप सो सकते, मां बाप सो सकते, नहीं सो सकते। क्यों? वो 24/7 बैक ऑफ देयर माइंड चलता रहेगा कि मेरी बेटी घर में बैठी, मेरे बेटी घर में बैठी। आप सो सकते, मां बाप नहीं सो सकते। इताअत ए वालिदैन और तरबियत ए औलाद का ये इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा, अब सुनो। शेख अब्बास खुम्मी, हजारों मरतबा आपने मुझसे भी नाम सुना और आप भी जानते शेख अब्बास खुम्मी कौन है। खुम में अल्लाह बीबी मासूमा की हमको ज्यारत नसीब करे, बहुत बड़ी ज्यारत है, बहुत बड़ी ज्यारत है बीबी मासूम। खुम के ये स्टूडेंट थे, खुम के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे अब्बास खुमी। ये आज दफन है, इनकी ग्रेव जो है नजफ अशरफ में। मौला की अल्लाह ज्यारत नसीब करे इंशाल्लाह। इमाम अली के रोजे में जब जाना तो मौला के रोजे में जो बाब साद है, सॉरी बाब तूसी है, शेख तूसी का जो दरवाजा है, शेख मुर्तजा अंसारी और शेख तूसी, शेख मुर्तजा अंसारी का मैंने यहाँ वाक़या पढ़ा है, शेख मुर्तजा अंसारी और शेख तूसी के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे ये दफन है, उनकी ग्रेव है। ये फैमिली खुम की रहने वाली फैमिली, शेख अब्बास खुम्मी की। शेख अब्बास खुम्मी, आज इनकी कई किताबें हैं, मोर देन 100 बुक्स हैं इनके पास, इन्होंने लिखी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी और वेरी वेरी पायस पर्सन एंड वेरी वेरी नॉलेजेबल। इनकी मशहूर किताब जो हर घर में बॉम्बे में भी होगी, पूरी दुनिया में हर घर में इनकी एक किताब तो रहती है। आज के दौर में हर घर में, एक गरीब का घर हो या पैसे वाले का घर, इनकी किताब हर घर में, हर शिया के घर में है। और दो दफ़ा तो वो किताब निकलती निकलती है, 15 शाबान के आमाल के वक्त और शब कदर के वक्त। मशहूर तरीन बुक जिसका नाम है मफातीउल जिना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुक है। ज़ाहरी तौर पे तो कोई ख़ास बुक नहीं है, दुआएं हैं, लेकिन ये वो है कि जो शेख अब्बास खुम्मी को इतना मशहूर किया पूरी दुनिया में कि आज पूरी दुनिया में शेख अब्बास का नाम मफाती से मशहूर है। जबकि मफाती को एक्स्ट्रा, फिर गौर से सुनना, एक अजीब वाक़या बता रहा कि अगर माँ बाप की इज्जत करोगे, माँ बाप की रेस्पेक्ट करोगे, तो अल्लाह तुमको कहाँ, ज़मीन पर अगर हो तो अर्श पर लेके जाता। इफ़ यू रेस्पेक्ट औलाद की तरबियत में ये इम्पोर्टेंट तरीन पहलू। शेख अब्बास आज दुनिया में बड़े मशहूर है इस किताब की वजह से। अब घरों पे जाके देखना, सबके घर में होगी, कई लैंग्वेजेस में प्रिंट हुई, गुजराती में, इंग्लिश में, उर्दू में, पर्शियन में, हर जबान में ये किताब है। तो आप जाके, अफ्रीकाना में भी है ये किताब, आप जाके देखो। मफाती कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक नहीं है। मफाती में क्या है, स्टार्ट सूरह यासीन से होता और डे टू डे एवरी डे की दुआएं हैं, कुरान के सूरे हैं, हर दिन की दुआ है, एवरी डे जो दुआएं हैं वो पर्टिकुलर दुआएं हैं, हदीस किस्सा है, ज्यारत आशूरा है, वारी सारी ज्यारात हैं, और हमारे मासूमीन की जितनी ज्यारात हैं, मदीने मुनवरा, मशहद मुकद्दस, मक्के मौजमा, करबला मौला, नजफ अशरफ, काजमैन, सामेरा, सारी ज्यारतों के डिटेल्स हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुरान के सूरे, ज्यारात, डे टू डे लाइफ के दुआएं और ईद बकरीद की नमाजें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल बुक है, एब्सोल्युटली नॉर्मल बुक। ऐसी कई किताबें हमारे उलमा ने लिखी, इससे बेहतर किताबें लिखी, लेकिन उनकी वो किताबें इतनी मशहूर नहीं हुई। एक जमाने में तोहफतुल्लाम बहुत मशहूर थी, 30-40 ईयर्स पहले हर घर में थी तोहफतुल्लाम, लेकिन वो इतनी मशहूर नहीं हुई जैसे मफातीउल जिना मशहूर हुई। पूछा गया कि इनकी, शेख अब्बास के दूसरी जो किताबें हैं वो बड़ी नॉलेजेबल, बड़ी इल्मी किताबें, वो इतनी मशहूर नहीं हुई, ये मफाती क्यों मशहूर हुई? अब इसका वाकया सुनो, इसी पे आज मजलिस ख़त्म कर रहा मैं। सिर्फ मफाती, जबकि दूसरी बहुत अच्छी अच्छी किताबें इन्होंने लिखी, लेकिन इतनी फेमस नहीं हुई। मफाती बड़ी फेमस है। मैं यूथ को बोल रहा कि तुम गौर से सुनो ये वाकया, कि कंप्लीट मैसेज है तरबियत औलाद में। तो जब पूछा गया तो पता चला कि ये फैमिली खुम में रहती थी और इनके माँ बाप भी खुमी, इसलिए खुमी कहलाते हैं।
इनके वाले इन्होंने ये मफाती लिखी थी उस जमाने में, लिखी जब प्रिंट आउट जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था ना कंप्यूटर था, उन्होंने ये किताब लिखी। इनके एक दोस्त जो खुम में पढ़ते थे, ये भी स्टूडेंट थे, उनका दोस्त भी एक था मदरसे में जो पढ़ता था, तो वो स्टूडेंट ने इनसे कहा, जो इनका इनका फ्रेंड था कोलीग था वो मदरसे में पढ़ता था, ये मदरसे उस जमाने में नहीं पढ़ते थे, इनसे आके कहा कि शेख तुमने बहुत अच्छी किताब लिखी यार मफाती, उसमें से वाकयात हैं दुआएं हैं, कैन यू गिव मी, मैं उसमें पढ़ के मासूमा के रोज़े में रोज़ मजलिस पढ़ रहा तो मैं मजलिस पढ़ता हूँ वो उसमें से निकाल के। इन्होंने दे दी किताब अपनी। अच्छा उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो खलमी किताब थी, एक ही नुस्खा था, उन्होंने दे दी। इनका दोस्त उसमें से पढ़ा कि ज़्यारत के आदाब क्या हैं, ज़्यारत की फजीलतें क्या हैं, सब सवाब के, और रोज़ खड़े रह के तकरीर कर रहा था 15 मिनट आधा घंटा एवरी डे। तो खुम में जितने लोग थे और जो ज़ायरीन थे वो लोग इस लड़के की मजलिस में बैठते थे और बैठ के बोलते थे यार कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा। शेख अब्बास के वालिद भी बैठ गए, इन्होंने रोज़ देखा कि बेहतरीन स्पीच दे रहा, बेहतरीन तकरीर कर रहा। शेख अब्बास के वालिद सुने, सुन के घर आए, घर आके क्या कहा शेख अब्बास से, अपने दौर का मर्जा इनके फादर ने कहा कि शेख तुमसे मुझे कितनी उम्मीद थी, कितनी उम्मीद थी बेटा कि तुम बड़े आलिम बनोगे, बड़े जाकिर बनोगे, खतीब बनोगे, अच्छा काम करोगे, तुमने कुछ नहीं किया। देखो तुम्हारा दोस्त कितनी अच्छी स्पीच दे रहा रोज़, कितनी अच्छी तकरीर कर रहा रोज़, तुम तो कुछ ही नहीं कर रहे, तुमसे इतनी उम्मीद थी और तुम कोई फ़ायदा ही नहीं दिए, मेरा नाम ही नहीं वो करे, सारी मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शेख ने कहा कि अगर उस वक्त मैं एक जुमला बोलता, एक वर्ड बोलता कि बाबा डैड वो जो पढ़ रहा वो मेरी किताब से पढ़ रहा, तो कुछ देर के लिए मेरा बाप शर्मिंदा हो जाता। मैंने कहा ये जो मैं लिखा हूँ वो जो पढ़ रहा मैंने तो अल्लाह के लिए लिखा, अब अल्लाह इसको अजर देगा। जवाब नहीं दिया, ये भी एक तरबियत है, जवाब नहीं दिया। आप सोच रहे मेरी बात कि जवाब नहीं दिया, बाप को एक सेकंड के लिए भी इंसल्ट नहीं किया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने इनको वो इज्जत दी कि आज मिलियंस की तादाद में मफाती लोगों के घरों में है, या अरबी हो, ईरानी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, अफ्रीकाना बोलने वाला हो, कोई जबान का बोलने वाला हो, हर लैंग्वेज में ये किताब मौजूद है। आप सोचो आज इतने अरसे से अगर शेख अब्बास जिंदा है तो मफाती की तरफ से जिंदा है, कितना उसको अजर मिल रहा। मैं यही तो बोलना चाह रहा कि बच्चों को ऐसी तरबियत दो कि तुम्हारा बेटा इस स्टेज पे पहुंचे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, 50 मिनट की मजलिस हो गई, मौला आप सबको खुश रखे। ये अय्याम तो सिर्फ औजारी के अय्याम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वहाँ पे लेडीज में, लेडीज में मैं ये ऐलान आप लोगों के लिए नहीं कर रहा, जेंट्स के लिए नहीं है, लेडीज़ के लिए। ख़वातीन में किसी मोमिना का मोबाइल फ़ोन गिर गया है, अगर किसी को मिला है तो वो मैनेजमेंट को वापस कर दें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मोबाइल। मैं बस इतना ही बोलता कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एक्सपीरियंस मुझे हो चुका। मेरा भी मोबाइल नजफ़ अशरफ से कर्बला जाते वक्त अभी रिसेंटली गुम गया था, तो मुझे मालूम है कि कितनी तकलीफ़ होती है। मोबाइल की तकलीफ़ नहीं होती, वो कॉन्टैक्ट्स की तकलीफ़ होती कि जो कॉन्टैक्ट्स पूरे चले गए, एंड यू कैन इमेजिन कि पूरी दुनिया के मेरे कॉन्टैक्ट्स एक सेकंड में चले गए। तो अगर किसी खातून को मिला है प्लीज़ रिटर्न कर दें, 7 मुहर्रम है, रख नहीं सकते अपने पास। वो एक्सपेंसिव आईफोन भी हो या कुछ हो, रख नहीं सकते। एक आज़ादार हुसैन का फ़ोन है, आप मैनेजमेंट को दे दो, बोल के दे दो कि ये यहाँ पड़ा हुआ था, बस काफ़ी है। आपको मालूम है अब यही वायदे, अभी रिसेंटली मैं एक ग्रुप में बॉम्बे से अलमुंतज़र का टूर में जो मैं लीड करता हूँ, 13 रजब को मैं आपको बता रहा कि दुआ का असर क्या है। आप देखो कि आप कितना बड़ा कमाल है। हमारा ग्रुप जो बॉम्बे से गया था, पूरे हर तरफ के लोग थे, अलमुंतजर के थे, 13 रजब को गए, मस्जिद सहला में पहुँचे, बॉम्बे की एक खातून, एक लड़की, उनके हस्बैंड आते हैं यहाँ पे मदरिस में, तो मस्जिद सहला में अमाल कर रही थी, उसके पर्स को किसी ने उठा लिया और उसके पर्स में पासपोर्ट था उसका। आप इमेजिन करें, पर्स की उसको तकलीफ नहीं थी, पासपोर्ट, पासपोर्ट यानी 2-3 वीक्स इंडियन एम्बेसी लेती है पासपोर्ट बनाने। अब मोजिजा मैं बता रहा हूं आपको, क्या मोजिजा हुआ, पासपोर्ट उसका पर्स, अब सब पूरा मस्जिद ढूंढ लिए, ऐलानात करा दिए, कुछ नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ, मौला के रोजे में गए, कहा मौला हम लोग आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। मौला आप बर्थडे गिफ्ट ये तो हमको मत दो कि एक मोमिना का पासपोर्ट चले गया, व्हाट शी इज गोइंग टू डू, व्हाट शी इज गोइंग टू डू, 2 हफ्ते तक वह निकल नहीं सकती, पासपोर्ट गुम जाए। दोस्तों 13 आज की रात मौला की बर्थडे रात थी, 12th, ये 10th या 11th को हुआ यह वाकया। काफिले का हर आदमी दुआ कर रहा, उस दिन सुबह में मैं हरम जाके मैंने बोल के मैं आया बस होटल, और हमारे जो ग्रुप के लीडर्स थे वो लोग भी गए, उनका भाई भी था सर। फाइनली क्या हुआ, आप सोच सकते हैं, मौला को वास्ते देके आए थे कि मौला आज आपकी बर्थडे है, लेट अस सेलिब्रेट बर्थडे हैप्पीली। मौला उसका दिल की हालत क्या, उस चेहरा उतर गया उस बच्ची का। फाइनली यू नो यू कैन अंडरस्टैंड, आप बिलीव करेंगे, हम लोग जोहर के वक्त वापस आए हरम से, एक खातून, एक लेडी पर्स लेकर आई, लाके होटल रिसेप्शन पे दी, इसलिए कि होटल का कार्ड था पर्स में, विथ पासपोर्ट पर्स रख के गई और बोलती है, तो उस पर खंगा मच गया, उसने फौरन ऊपर से बुलवा लिया हम लोगों को, हम लोग सब आ गए। तो हमने कहा कि चाहिए क्या, अब उसको कुछ पैसे दें, शी सेड नो आई डोंट वांट एनी मनी, इराकी लेडी, इराकी लेडी, नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए। तो फाइनली कुछ दिया, वो गई जाके इतने बड़े चॉकलेट्स का इतनी बड़ी ट्रे लेकर आई, लाके बांट के चली गई। कहाँ से आई, 80 मील दूर से आई है, वो नहीं आई, उसको भेजा गया। मैंने उस वक्त कहा था उस लड़की से कि मैं रिज्यूमे में बोलूंगा तेरे बारे में, ऐसा मौजिजा मौला के, ये साल यही साल 13th रजब को चलो मेरे साथ, फिर अब की एक और मौजिजा होने वाला है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बोल रहा कि कभी चलो ज्यारत पे, तो फिर पता चलेगा कि इमाम अली के रोजे में मजा क्या है। हाँ, अली के पास जाके मांगना क्या और कैसे मांगना और कैसे अली देता है, आज के दौर की बात कर रहा, जो इम्पॉसिबल था, सब लोग परेशान हो गए, यकीन ही नहीं आ रहा जब उसका पासपोर्ट वहां पे आया। ये है मौला, ऐसा बचाता है, औलाद को तुम बचा लो, मौला तुम्हारी जिंदगी में बरकतें अता करेगा। बस दोस्तों आज कितनी अजीम और मुसीबत की रात आज आगाज हो गया, ये रात का आपको अंदाजा है, शबे 7 मुहर्रम है आज, कितनी रातें बाकी हैं, जस्ट 3 नाइट्स, 3 रातें बाकी हैं बस आजादारी को, 3 रातें हैं बस, उसके बाद हुसैन रुखसत हो जाएगा तुमसे। ये रिजवी कॉलेज में जो हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी रौनक है बाहर से लेके अंदर तक, अल्लाह रिजवी साहब को सलामत रखे, कितनी रौनक है, ये सब उजड़ जाएगा, कोई नहीं आएगा 10 मुहर्रम के बाद, श्याम गरिमा की मजलिस करोगे चले जाओ। कितना इंतजार था कि हुसैन आए, हुसैन आए, हुसैन आए, करबला वाले आ भी गए, आज 7 मुहर्रम की रात भी आ गई। ये वो रात है कि कल की सुबह हुसैन के खयाम हुसैनी से कयामत के जुमले बुलंद होंगे, छोटे छोटे बच्चे एक खेमे से दूसरे खेमे में जाएंगे, यही कहेंगे अल्लाह तआला अरे हम प्यासे हैं, साखिए कौसर के बच्चे हैं जो प्यासे हैं। दोस्तों प्यास तो अपने कमाल पे है, बच्चों की प्यास कल की सुबह से शुरू हुई, हुसैन अब्बास ओ बीबी जैनब ओ अली अकबर और जितने बड़े हैं उनकी प्यास कब शुरू हुई किसी को नहीं मालूम।
हो सकता 5 मुहर्रम से वो लोग प्यासे हैं, अपने हिस्से का पानी भी बच्चों को दे रहे थे कि मेरे बच्चे आप सोचो कि क्या अब्बास पानी पी रहे होंगे या हुसैन, जब सकीना आके कहती होगी बाबा प्यास मारे डालती, किस हालत में हुसैन के बच्चे थे। दोस्तों बड़ी आसानी से मैं बोल रहा, आप खुद अंदाज़ा लगाओ, जो आज पूरी दुनिया में सबीलें लगती है ना, वो सिर्फ हुसैन के बच्चों की प्यास की याद है, वो उस प्यास की याद है जो छोटे छोटे बच्चों ने पुकार के कहा था कि हम प्यासे हैं। कभी भी सबील पे जाओ तो पानी ज़रूर पियो, हो सकता वहाँ सकीना खड़ी हुई होगी, हो सकता हुसैन के बच्चे खड़े होंगे, हो सकता सकीना खड़े रहकर बाबा के नाम पे पानी पिला रही होगी। ये आज बोलती होगी बीबी के हाय काश ये सबीले करबला में होते। दोस्तों आज पूरी दुनिया में 7 मुहर्रम को एक शहीद का जिक्र होता है, हर जगह यही शहीद का जिक्र है। करबला का वो दूल्हा जिसकी मेहंदी उठाई जाती, और ये ऐसी शादी थी करबला में हुसैन के घर की कि दूल्हा भी प्यासा था दुल्हन भी प्यासी थी, इतने प्यासे कि पानी का एक खतरा नहीं, सिर्फ दूल्हा दुल्हन प्यासे नहीं सारे बराती प्यासे हो गए थे। ये ऐसा शहीद है करबला का जिसको जिंदगी में बड़ी ख्वाहिश थी जंग करने की, तो इसीलिए सबसे ज्यादा सख्त मरहलों से कासिम गुजरे। ये करबला का वो शहीद है कि जिसको जिंदगी में पामाल कर दिया गया, दूसरे शहदा शहादत के बाद पामाल हुए, लेकिन कासिम वो शहीद है कि जिसको जिंदगी, आपको मालूम है पामाली किसको बोलते हैं? पामाली यानी लाश के पीसेस का बदलना, कासिम की लाश पीसेस में बदल गई थी, गए थे इमाम हुसैन ने गठरी में कासिम का लाशा उठाया था और पीठ पे रख कर जब लेकर आए तो सैदानियों में कोहराम मच गया। शबे आशूर जब आई मौला हुसैन फेहरिस्त सुना रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे कि कल ये शहीद होगा, ये शहीद होगा, ये शहीद होगा, ये शहीद होगा। जब आनो मोहम्मद का जिक्र आया कि ये जैनब के दोनों बच्चे ज़िबा होंगे, उस वक्त हसन का यतीम खड़ा हुआ, खड़े होके कहने लगा चचा कि क्या मेरा नाम नहीं है? इतनी मासूमियत से 13 या 14 बरस का सिन है या 15 बरस का सिन है, तड़प के कहा चचा क्या मेरा नाम नहीं है? हुसैन ने कहा मेरे लाल कासिम तुम्हारे लिए मौत कल के दिन कैसी है? तो कासिम ने कहा कि चचा कल के दिन मौत शहद से ज़्यादा मीठी है। अजीजों बस ये कहना था, हुसैन ने कहा कि कासिम तुम्हारा नाम भी है और तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का नाम भी है। जैसे ही अली असगर का नाम सुना हसन का खून है रगों में दौड़ने लगा, बड़ा तड़प के कहता है कि चचा के अशकिया खैबे में आ जाएंगे? मैं कहूँ बेटा शहजादे आहिस्ता कहिए कहीं जैनब ना सुन ले, इसलिए कि शामे गरीबा में जब लश्किया आएंगे जैनब पुकार के कहेगी कासिम तुमको गवारा नहीं था, आके देखो हमारे सरों से चादरें छीनी जा रही। हुसैन ने कहा मेरे लाल कल के दिन मौत शहद से ज्यादा तुम्हारे लिए मीठी है, तुम्हारा नाम भी है बेटा। दिन गुजरा, जब अंसार सब शहीद हो गए, जैनब का घर उजड़ गया, दोनों बच्चों के लाशें आ गए। मैं कितनी आसानी से बोल रहा, कहा कि जब दोनों बच्चों की लाशें आ गई और कासिम खैमे में आए तो उम्मे फरमा ने कहा कि बेटा अभी तक गए नहीं, रोज़े महशर फातिमा को सूरत बताना है बेटा, क्यों नहीं गए? तो कहा अम्मा चचा इजाज़त नहीं देते। तो उस वक्त उम्मे फरमा ने कहा कि बेटा वो तावीज़ को खोलो जो तुम्हारे बाबा ने तावीज़ बांधी है। अजीजों तावीज खोली गई, ये तावीज नहीं थी बल्कि भाई को भाई का नाम खत था।
हसन ने खत लिखा था कि भैया हुसैन रोजे आशूर मैं नहीं रहूंगा, मेरी तरफ से मेरे बेटे कासिम को इजाजत दे देना। अजीजो भाई के खत को लेकर, बाबा के खत को लेकर हुसैन के पास पहुंचे। जैसे ही हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, भाई का जमाना याद आया, हसन की मोहब्बतें याद आई, फौरन हुसैन रोने लगे। कहा कि बेटा तुमने मुझे मजबूर कर दिया। हाथ पकड़ के खैमे में लेकर आए। जब खैमे में लाए तो जैनब से कहा कि कुबरा को लेकर आओ। ये करबला की अजीब शादी थी अजीजों, दोनों की हसन की वसीयत थी, उस वसीयत पे हुसैन ने अमल किया। करबला का दूल्हा मसनद से उठा और जब चलने लगा तो चलते चलते उस वक्त उम्मे फरवा ने रोक के कहा, मेरे लाल मैदान में तो जा रहे लेकिन वापस नहीं आना, इसलिए कि फातिमा को सूरत बताना। कासिम मैदान में आए, उमर साथ जालिम ने कहा कि अरजक जो एक नामी पहलवान था उसने कहा कि जा कासिम के मुकाबले में। उसने कहा मैं इस बच्चे के मुकाबले में क्या जाऊंगा, मेरे सात बेटे, मैं एक बेटे को वो भेजूंगा वो इसके सर को खलम कर देंगे। अरजक का अरब में नाम था, इसके बच्चों का भी नाम था। अरजक का एक बेटा आया, हसन के यतीम ने उसका वाचल जहन्नम किया। दूसरा आया, तीसरा आया, सात बेटों को कासिम ने वो जंग की, सात के सात वासिले जहन्नम हो गए। जब सात बेटे अरजक के खत्म हुए, अरजक की आंखों में खून उतर आया, वो मैदान में आ गया। अरजक इतना नामी पहलवान और 13 बरस का या 14 बरस का कासिम, जब अरजक आया तो मौला अब्बास खैमे से बाहर आ गए, इसलिए कि कासिम शागिर्द है अब्बास के। अब्बास ने पुकार के कहा, मेरे लाल घबराना नहीं, मेरे बच्चे घबराओ मत। अब्बास दरवाजे पे आ गए खैमे के और देख रहे थे कि कासिम जंग कैसे कर रहे। ऐसी तलवार चलाई हसन के यतीम ने कि देखते ही देखते अरजक जमीन पे नजर आया। अब्बास दौड़ते हुए गए, जाके कासिम को सीने से लगा के कहा, मेरे लाल खूब जंग की, बाबा की जंग याद आ गई। अजीजों कब तक लड़ता हसन का यतीम। मौला आपको आबाद रखे, मौला आबाद रखे। इसी तरह बुरसा दो कि आज हसन तुमको दुआ दे, आज हुसैन तुमको दुआ दे, बीबी कुबरा से मांगो। अजीजो मौला शहजादा कासिम इतना हसीन था कि मौला हुसैन ने कासिम के चेहरे पे एक हल्का सा कपड़ा बांध दिया था कि कहीं मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए। तो हाल ये हुआ कि जब लड़ रहे थे तो चेहरे से कपड़ा हटता था, जब हटता था तो दुश्मन पुकार के बोलने लगा, कितना हसीन है ये, कितना खूबसूरत है। अरे जो दुश्मन की निगाह में हसीन हो वो मां की निगाह में क्या होगा। लड़ते लड़ते जब हर तरफ से हमले होने लगे, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, कासिम घोड़े से जमीन पर आए, अपने दोनों हाथों को करबला का दूल्हा जमीन पर टेक कर चचा का इंतजार कर रहा था। हुसैन अब्बास और अली अकबर तलवार लेकर चले, बीच में फौज आ गई। हुसैन ने तलवार निकाली, अरे घोड़े उधर जाने लगे जहां कासिम अपने चचा का इंतजार कर रहा था, इधर के घोड़े उधर होने लगे। कासिम पुकार रहे थे, चचा मेरी मदद को आओ चचा। जब हुसैन पहुंचे तो कासिम के लाश के टुकड़े हो चुके थे। हुसैन ने सर पीटा कि मेरे लाल तुमने मदद मांगी लेकिन चचा शर्मिंदा है कि मैं तुम्हारी मदद को नहीं पहुंच सका।